الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، فما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. इस क्लास में हम सूरह अनआम की तफसीर पढ़ा करते हैं, मारिफुल कुरान की जिल्द नंबर 3 में से, और सूरह अनआम की आयात नंबर 103 से लेके 107 तक जो अभी तिलावत की गई, इनका तर्जुमा हमने पिछली क्लास में पढ़ के मुकम्मल कर लिया था। और आज खुलासे तफसीर और मारिफ व मसाइल इंशाल्लाह अगर वक्त हुआ तो पढ़ेंगे। तो इन आयात का जो कि जो तफसीर है, इब्तदाई तौर पर हम खुलासे तफसीर पढ़ते हैं जो कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर बयान और कुरान से यहाँ पे नकल की गई है। और इसमें ब्रैकेट्स में जो है वो मुख्तसर तफसीर होती है, जब इसको खुलासे तफसीर कहा गया, और अंडरलाइन जो वर्ड्स होते हैं वो तर्जुमा होते हैं। तो फरमाते हैं कि और उसके अलीम होने की और उसमें मुनफरिद होने की ये कैफियत, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अलीम है और मुनफरिद है, हर एक से यूनिक है, हर एक से मुख्तलिफ है, क्योंकि अल्लाह की सिफात के बारे में ही बात पीछे से चल रही है ना, तो उसी को फिर आगे इस एक्सप्लेनेशन के साथ फिर कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई उसकी क्या कैफियत है, यानी हाउ इज इट। ये हाउ इज इट से मुराद ये कि अल्लाह ताला जैसे कहते हैं ना कि उसके अलीम होने की शान क्या है, ठीक है, और मुनफरिद होना तो फिर कैसे वो मुनफरिद है। तो वो ये है कि उसको तो किसी की निगाह मुहित नहीं हो सकती, ला तुद्रिकुहुल अबसार, किसी की निगाह उसको मुहित नहीं हो सकती, यानी किसी की निगाह ऐसी नहीं है कि जो उसको उसको पूरा का पूरा देख सके, उसका पूरा का पूरा इहाता कर सके, एनसर्कल कर सके अल्लाह को अपनी निगाह के अंदर। दुनिया में तो इस तरह के कोई देख ही नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं देख सकता ना उसको, ठीक है। दुनिया में तो यह हाल है कि हम बिल्कुल ही अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, जैसा कि दलाइल शरईया से साबित है। और आखिरत में इस तरह के अहले जन्नत वो देखेंगे, यानी दलाइल शरईया क्या है, ये कुरान मजीद सबसे पहली दलील होती है ना शरीयत की, ठीक है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया ला तुद्रिकुहुल अबसार, ठीक है, तो ये दलील शरीयत बन गई कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसको नहीं देख सकते। तो दुनिया में तो इस तरह की कोई देख ही नहीं सकता उसको, जैसे कि दलाइल शरीयत से साबित है। और आखिरत में इस तरह के अहले जन्नत वो देखेंगे, अल्लाह को देखेंगे, जैसे कि ये भी दलाइल शरईया से साबित है, लेकिन इहाता महाल रहेगा, इहाता महाल रहेगा। और जिस मखसूस बिलबसर के जाहिर का इहाता एहसास बसरी से महाल हो, तो उसकी हकीकत बातिनी का के जाहिर के मुकाबले में बदर जहां खफा खफी तर है। इहाता करना अकल से जो कि एहसास से बदर जहा ज्यादा मुहतमल खता है, बदर जह उला महाल होगा, ठीक है। अब मुश्किल इबारत तो ये ऑफ कोर्स है, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर लेते हैं कि भाई जन्नत में अल्लाह ताला को देखना जो है ना, ये भी दलाइले शरिया से ही साबित है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों से ये बात हमें पता चलती है कि अल्लाह ताला को देखा जाएगा, ठीक है, जन्नत में ईमान वाले ही जन्नत में दाखिल होंगे और वो अल्लाह ताला को देखेंगे। तो फिर हदीस भी तो दलाइले शरीयत में से एक दलील है ना। सबसे पहली दलील क्या है? दलाइले शरीयत में से कुरान, और फिर दूसरी हदीस मुबारका, तो उससे भी साबित है कि हाँ भी देखा जाएगा। लेकिन वो भी जो देखना होगा ना, वो भी ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरीके से अल्लाह ताला को देख लिया जाए, ठीक है, बल्कि बहुत ही यानी महाल रहेगा, मुश्किल रहेगा अल्लाह ताला को उस वक्त भी मुकम्मल तरीके से देखना। और फिर आगे जो फरमाया कि आंखों की जो हिस है, ठीक है, ये जो हमारी आंखें हैं, ये हवासे खमसा में से एक हिस है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें हवास अता फरमाया ना, जिन हवास के जरिए से हम चीजों का इदराक करते हैं, वो हवास कितने हैं? पांच, जिनको हवासे खमसा, अंग्रेजी में फाइव सेंसेस उनको कहते हैं। तो उनमें से एक हिस क्या है? हमारी आंखों की हिस। दूसरी हिस जो है वो हमारे कानों की हिस है। तीसरी हिस जो है वो हमारी नाक की यानी सूंघने की हिस है, ठीक है, और चौथी हिस जो है वो हमारी टच करने की हिस है, ठीक है। टच करके जो आप किसी चीज का की समझ हासिल करते हैं, तो ये भी एक हिस है ना, ठीक है। और पांचवी हिस क्या है? वो चखने की, जुबान की हिस। तो एहसास बसरी यानी आंखों की हिस जो है वो एक हिस है। तो फरमाते हैं कि जिस महसूस बिल बसर, यानी कोई ऐसी चीज जिसको कि आप अपनी आंखों से देख सकते हो, तो अगर उसके जाहिर का इहाता करना एहसास बसरी से महाल हो, यानी आंखों से आप उसकी जाहिरी तौर पर नहीं देख सकते हो, तो उसकी हकीकत बातनी का तो और भी ज्यादा मुश्किल है, उसकी हकीकत को जानना, ठीक है। आप किसी चीज को जाहिरी तौर पर ही नहीं सही तरीके से देख पा रहे हैं, तो उसकी हकीकत तो आपकी आंखों से वैसे भी नजर नहीं आती। हकीकत तो अंदर की चीज को कहते हैं ना, छुपी हुई होती है वो, तो वो तो और भी ज्यादा मुश्किल है ना उसको समझना, ठीक है। तो जो अंदर की चीज होती है वो आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर उसको कैसे समझता है इंसान? उसको अपनी अकल से समझता है, ठीक है, अकल से समझता है कि अच्छा ये चीज अगर देखने में क्या कहते हैं गोल नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो है ना वो कोई ऐसी चीजें होंगी जो कि गोल से मुताल्लिक हो, यानी राउंड सर्कल वाइज हो, ठीक है। तो जाहिरी तौर पे आपकी आंखों ने उसको देख लिया कि अच्छा वो चीज जो है ना वो गोल है, तो अब आपकी अकल जो है ना वो समझने की कोशिश करिए कि अच्छा फिर इसके अंदर जो है ना कोई ऐसी चीज होगी कि भाई जो कि सेंट्रली कॉन्फिगर्ड हो, ठीक है। तो ये अकल से फिर आप अंदर की बात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी चीज को अगर आप अपनी आंखों से ही देख ना सके, तो फिर आपकी अकल उसको उसकी हकीकत को भी नहीं पहचान सकेगी। तो अल्लाह ताला को देखेंगे तो सही, लेकिन ऐसे देखेंगे कि इवन आंखों से भी वो पूरी तरीके से हमें नजर नहीं आ रहा होगा। तो फिर अल्लाह की हकीकत को जानना क्योंकि अकल का काम है, वो तो बहुत भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये बेसिकली हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर इसकी तफसीर फरमाई, ठीक है। और आगे फिर जो जो अल्लाह ताला ने फरमाया वह हुआ युद्रिकुल अबसार, तो इसका तर्जुमा के और वो यानी अल्लाह ताला सब निगाहों को जो कि उसके इहाते से आजिज थी वजूबन मुहित हो जाता है, ठीक है। यानी वही आंखें जो कि अल्लाह को देखने से आजिज हैं, अल्लाह ताला लाजिमन, वुजूबन से मुराद लाजिमन, उन आंखों को देखता है, बल्कि जाहिरी तौर पर खाली नहीं देखता, बल्कि उन आंखों की हकीकत को भी देखता है, जैसे हमारी आंखें, ठीक है। अब हम अल्लाह ताला को आंखों से जो देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो हमारी आंखों को मुकम्मल तौर पर देखता है ना, बल्कि हमारी आंखों के पीछे जो हमारा दिमाग छुपा है, अल्लाह ताला हमारे दिमाग को भी देखता है। और हमारे दिमाग में जो सोचे हैं, अल्लाह ताला उन सोचों को भी जानता है, और अल्लाह ताला हमारे दिमाग की नसों को भी जानता है, दिमाग की कंप्लीट एनाटॉमी को भी जानता है। ठीक है, तो हम अल्लाह ताला से बिल्कुल भी छुपे हुए नहीं है, कंप्लीटली अल्लाह ताला के सामने एक्सपोज है, जबकि अल्लाह ताला हमसे छुपा हुआ है। और जब अल्लाह ताला हमें नजर आएगा भी, तो वो भी पार्शियली नजर आएगा, बहुत ही कम नजर आएगा। अल्लाह ताला की हकीकत उस वक्त भी हमें समझ में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला है ही ऐसा ना। जैसे कि जुमे का बयान अगर आप में से किसी ने सुना हो और याद हो, तो उसमें हमारे मशायख का एक कौल जो है वो शायद जिसने नकल किया था कि अकल वो है जो अल्लाह तक पहुंचाए, लेकिन अल्लाह तो वही है ना जो कि अकल में ना आए। ठीक है, तो अकल में तो हमारी महदूद चीजें हैं, हमारी अकली महदूद है, तो उसमें महदूद बातें ही समझ समा सकती हैं। अल्लाह ताला तो लामहदूद है, वो हमारी अकल के अंदर कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो फरमाए के इसी तरह और चीजों को भी इल्मन मुहीत है, वह हुआ बिकुल्ले शैइन अली, यानी अल्लाह ताला हमारी आंखों का भी इहाता कर लेता है, और अल्लाह ताला हमारी आंखों के अलावा जो कुछ भी है उन सब का भी इहाता कर लेता है, सबको भी कंप्लीटली अल्लाह ताला जानता है। जैसे कि दूसरी जगह पे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह बिकुल्ले शैइन अली, और वो इस अमर से कि वो सबको मुहीत है। अब आगे मजीद ये कि वाह हुवल लतीफुल खबीर, अब इसकी बात हो रही है, इस आयत की बात हो रही है, तो इसके तहत फरमाते हैं कि और इस अमर से यानी इस तरीके से कि वो सबको मुहीत है, यानी हर एक का इहाता कर लेता है, और उसको कोई मुहीत नहीं है, यानी कोई उसका इहाता नहीं कर सकता, ये बात लाजिम आ गई कि वही बड़ा बारीक है, बारीक बीन और बाखबर है। ठीक है, वो बारीक बीन है, बारीक बीन किसको कहते हैं, जो कि किसी को बड़ी बारीकी से यानी बड़ी तफसील से देख सकता है, उसको बारीक बीन कहते हैं उर्दू के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से लतीफ का यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपना अपनी सिफत लतीफ बयान फरमाई। ठीक है, क्योंकि लतीफ उसी को कहते हैं जो कि बहुत बारीक बीन होता है, और बारीक बीनी का लाजमी नतीजा ये होता है कि वो बाखबर भी होता है। ठीक है, और कोई दूसरा नहीं, यानी वही बारीक बीन और बाखबर है, और कोई दूसरा ना अल लतीफ है और ना अल खबीर है, और ये वो कमाले इल्म है जिसमें अल्लाह ताला यकता है, बिल्कुल मुनफरिद है। यहीं से बात शुरू करी थी ना, तफसीर जो शुरू करी थी इन आयात की, ये जो पहली आयत थी 103, तो यहीं से बात शुरू करी थी ना कि कैसे अल्लाह ताला मुनफरिद है और कैसे अल्लाह ताला अलीम है, इनकी कैफियत क्या है, इनकी तफसीर क्या है, तो वो ये सारी तफसीर है। ठीक है, कि चूंकि वो युद्रकुल अबसार, युद्रकुल अबसार, ठीक है, वह हुआ युद्रकुल अबसार और ला तुद्रकुल अबसार, तो इस वजह से वो एब्सोल्युटली यूनिक है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको के ला तुद्रकुल अबसार और वह हुआ युद्रकुल अबसार, ये किसी दूसरे के बारे में ऐसे नहीं कहा जा सकता, ऐसी बात नहीं कही जा सकती, सिर्फ अल्लाह के बारे में कही जा सकती। तो आप लोगों से कह दिए, अब आगे नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हो रहा है, कद जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, आप लोगों से कह दीजिए कि अब बिला शुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हक बीनी के जराए, यानी तौहीद और रिसालत के हक होने के दलाइल अकलिया व नकलिया पहुंच चुके हैं। ठीक है, तुम्हारे पास तौहीद और रिसालत के, यानी बसाइरु मिन रब्बिकुम का मतलब तौहीद और रिसालत के दलाइल, ठीक है, अकली दलाइल भी पहुंच चुके हैं और नकली दलाइल भी पहुंच चुके हैं। अकली दलाइल दूसरे तरह के, और नकली दलाइल से मुराद जो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्फाज अल्लाह ताला से पाए, उन अल्फाज को जो है वो इन लोगों तक पहुंचा दिया, यतलू अलैहिम आयाती ही के हुक्म पर अमल करते हुए इनके सामने तिलावत कर दी उन आयात की, तो वो नकली दलाइल बन गए, यानी नरेटेड कॉपीड, नकल करने का मतलब होता है ना कॉपी करना, तो वो ऊपर से सुना और आगे कॉपी कर दिया उन लोगों के सामने। तो इस तरह से वो नकली दलाइल कहलाते हैं। तौहीद के दलाइल भी और रिसालत के दलाइल भी। तो तौहीद क्या चीज है, अगर आप में से किसी ने हमारी यूथ क्लास सुनी होगी, सैटरडे को जो यूथ क्लास थी, तो उसके अंदर एक बात तौहीद के बारे में हुई थी। हजरत सईद बिन जैद रजील तारा के वाकयात हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जो अशर मुबशरा साहब में से एक सहाबी हैं। तो उसमें बात ये हो रही थी कि सईद रजील तारा के जो वालिद थे जैद रजी अल्लाह तारा जैद, ठीक है, तो वो नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया में नबी बनाए जाने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे जैद, ठीक है। लेकिन अच्छा, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की नबुवत की बातें सुनी नहीं, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत नबी के देखा ही नहीं, लेकिन उसके बगैर ही हजरत जैद जो थे वो तौहीद के ऊपर थे, वो शिर्क नहीं करते थे, वो बुतों की पूजा नहीं करते थे, वो बुतों के नाम पे जो ज़बह किए हुए जानवर होते थे वो उनको नहीं खाते थे, बल्कि वो दूसरे गुनाह भी नहीं करते थे, यानी जुल्म और झूठ बोलना ये सब कुछ भी नहीं करते थे, वो तौहीद पर थे, ठीक है। तो अब वो कैसे तौहीद पे पहुंचे, हालांकि सारे लोग जो थे वो शिर्क किया करते थे, इल्ला एक दो और लोगों के अलावा बाकी सब शिर्क किया करते थे। तो ये जैद जो थे ये कैसे तौहीद पे पहुंचे, तो उसकी वजह क्या थी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के खमीर के अंदर तौहीद को रखा है, ठीक, यानी उसके अंदर जो इनर्ट सिफत है तौहीद की, वो अल्लाह ताला ने दे के इंसान को पैदा किया है, ठीक है। तो अब जब हर इंसान को अल्लाह ताला ने फितरतन तौहीद पर बनाया है, तौहीद की बात को उसकी फितरत में डाल दिया है, तो फिर वो शिर्क क्यों करना शुरू हो जाता है। वो शिर्क इस तरह करता है कि अपने माहौल से मुतासिर होकर के वो अपने तौहीद के फितरत को दबा देता है और वो शिर्क करना शुरू हो जाता है। जैसे होता है ना, भेड़ चाल चलना शुरू हो जाता है, दूसरों की देखा देखी, बस सब ये कर रहे हैं तो इस वजह से मैं भी ये करता हूं, ठीक है, इस वजह से इंसान शिर्क करता है। वरना फितरतन तो वो तौहीद परस्त होता है इंसान, हर इंसान, हम में से हर एक। तो अब जो नबी आते हैं ना, तो नबी क्या करते हैं कि वो फिर से उसको तौहीद समझाते हैं, ठीक है, उसको तौहीद के दलाइल देते हैं, ताकि उसके अंदर फितरतन जो तौहीद मौजूद है वो फिर से गालिब आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से यहां फरमाया कि तौहीद और रसाइल रिसालत के हक होने के दलाइल अकलिया व नकलिया ये इन तक आपने पहुंचा दिए, तो आप इनसे कह दीजिए कि कद जाकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, तौहीद के दलाइल तुम तक पहुंच गए। अच्छा, रिसालत के दलाइल का मामला ये होता है कि वो तो नबी जब आता है, ठीक है, नबी जब मबऊस होता है तभी रिसालत के दलाइल जो है वो किसी को वो बताता है, ठीक है। रिसालत के दलाइल जो है कि भाई, रिसालत के दलाइल से मुराद क्या, कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, है ना, कि ये जो इंसान है जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था और जो कि मक्का मुकरमा में पैदा हुए थे, तो ये अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। इस बात को दलील से साबित करना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है, तो ये दलाइले रिसालत कहलाएंगे, ये दलाइले रिसालत कहलाएंगे। ये जो दलाइले रिसालत हैं इनके बारे में इस हाजिज ने एक बात कही थी क्लास के अंदर, अगर किसी को वो बात याद, किसी को याद है कि दलाइले रिसालत के बारे में क्या बात कही थी यूथ क्लास के अंदर सैटरडे के दिन, दलाइले रिसालत के बारे में क्या बात कही थी, किसी कोई तो होगा जिसने सुनी थी वो क्लास में, तो एक बात बड़ी अहम एक बात बताई, वो क्या, दलाइले तौहीद के बारे में तो हमने रिपीट कर दी वो बात जो बताई थी क्लास के अंदर, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में दलाइले तौहीद, सॉरी तौहीद डाली भी है, ठीक है, लेकिन रिसालत के बारे में क्या बात बताई। रिसालत के बारे में जी इन्होंने डायरेक्ट मैसेज में जवाब दिया है, कोई और भी जवाब देना अच्छा है अगर, एक जवाब तो आ गया अलहमदुलिल्लाह, लेकिन इन्होंने ऐसे लिखा है कि दूसरे लोग देख ना सके, तो वो हम फिर पढ़ के जब बताएंगे तो फिर वो सबको पता चल जाएगा, तो उससे पहले पहले अगर कोई और जवाब देना चाहे कि दलाइले रिसालत के बारे में क्या बताई, दलाइले रिसालत क्या होते हैं, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और अगर आप से पहले कोई इंसान दुनिया में पैदा हुआ हुआ था तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल है, तो ये दलाइले रसूल रिसालत ईसा अलैहिस्सलाम हो गई, ठीक है, और ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल है, और ये कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल है, ठीक है, तो ये बात कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, या मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, या ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है, तो क्या ये भी हमारी फितरत में मौजूद है, तो जैसे इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, दो जवाब आए दोनों से ही जवाब है कि नहीं, दलाइले रिसालत जो है ना ये इंसान की फितरत में नहीं, दलाइले रिसालत क्या मतलब कि मोहम्मद अरबी ये अल्लाह के रसूल हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के रसूल हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है, ये फितरत के अंदर मौजूद नहीं है, क्या मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंसान जब दुनिया में पैदा होता है तो उसकी फितरत में नबी का नाम मौजूद होता है, नबी का शहर लिखा हुआ मौजूद होता है कि ये नबी हैं और ये उस शहर में पैदा होंगे, और ये सब नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है, लेकिन अल्लाह एक है, अल्लाह ताला जिसने मुझे तख्लीक किया है उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, ये हर इंसान की फितरत में मौजूद है, ये बात हर इंसान की फितरत में मौजूद है, ठीक है, इसी वजह से अगर कोई शख्स दुनिया में ऐसा गुजर जाए कि जिस तक रिसालत की कोई भी खबर ना पहुंचे, कोई भी खबर ना पहुंचे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, जैसे 21वीं सदी में कोई शख्स पैदा हो अफ्रीका के किसी जंगल के अंदर, ठीक है, और उस जंगल में उस तक कोई भी ऐसी चीज ना पहुंचे जिससे कि उसको पता चल जाए कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के आखिरी रसूल, कोई भी ऐसी चीज उस तक ना पहुंचे, ठीक है, और वो ऐसे ही सारी जिंदगी गुजार करके मर गया, तो क्या उसको इस बात पे अजाब होगा कि वो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया, नहीं, उसको इस बात पे अजाब नहीं होगा कि वो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया, क्यों, इसलिए कि उसकी फितरत में दलाइले रिसालत मौजूद ही नहीं थे, वो तो कोई पहुंचाता उस तक खबर तब उसको पता चलती है ना, तो जब उस तक खबर अल्लाह ताला ने पहुंचवाई ही नहीं तो उसको अजाब भी नहीं होगा इसके ऊपर, लेकिन तौहीद की खबर ये अल्लाह ताला ने उस पर पैदा करके उसको पैदा किया है, उसके अंदर डाल के उसको पैदा किया है, अब किसी दूसरे ने पहुंचाने की जरूरत ही नहीं, तो अब अगर उसने तौहीद का इनकार करके दुनिया से चला गया तब उसको अजाब, ठीक है, तब उसको अजाब होगा, ठीक है, तो ये बड़ी कॉमन सी एक बात है, सादा सी बात है, लेकिन हमें नहीं पता होती है, और खुसूसन आजकल के नौजवान जो हैं वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर परेशान भी होते हैं, और डिस्कशन भी आपस में बहुत ज्यादा करते हैं, और उसकी भी वजूहात है क्यों आजकल के नौजवान इतना ज्यादा इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं, वो क्या टॉपिक कि भाई अगर कोई मुसलमान नहीं था तो फिर उसको अजाब क्यों होगा, ठीक है, उसकी ये डिस्कशन आजकल नौजवानों में और मतलब सब सब हर किस्म के नौजवानों में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और उसकी वजह क्या है ये तो अगर हम पूछें आपसे तो फिर टाइम लग जाएगा काफी, तो अगर कोई बताना चाहे तो खुद ही बता दे वरना हम आगे चल रहे हैं, क्यों आजकल इतनी ज्यादा डिस्कशन होती है कि अगर कोई बगैर मुसलमान हुए दुनिया से चला जाए तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा, क्या वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, ये वाली डिस्कशन इतनी क्यों होती है आजकल नौजवान, ठीक है, अच्छा आगे चलें कि अब तुम लोगों तक तो पहुंच गए ना दलाइले रिसालत, राइट, बात ये है कि ये तो एक इमेजिनरी शख्स है ना कि जिस तक दलाइले रिसालत नहीं पहुंचे, ठीक है, लेकिन जिससे किसी नबी ने बात कर ली और जिससे किसी मुसलमान ने बात कर ली, ठीक है, तो उस तक तो दलाइले रिसालत पहुंच गए ना। अब वो तो ये नहीं कह सकता कि मुझ तक दलाइले रिसालत नहीं पहुंचे, मुझ तक नहीं पहुंचे, इस वजह से मेरे ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे नबी पर ईमान लेकर के आऊं। नहीं, तुम्हारे तक तो पहुंच गए हैं, ठीक है, तुम्हारे तक तो पहुंच गए हैं, अब किसी किसी तीसरे शख्स तक नहीं पहुंचे, वो भाई उसका मसला है। वो ऐसा हो सकता है, कोई तीसरा शख्स इमेजिनरी तौर पर कोई ऐसा हो सकता है जिस तक नहीं पहुंचे हो। हम तो उसकी बात कर रहे थे, हम तुम्हारी बात को थोड़ी कर रहे थे, जिसके हमने बात कर ली है, जिसको तो हमने जो है वो कुरान दिखा दिया है, जिसको नबी अलैहिस्सलाम सलाम की सिफात का बता दिया है। तुम तक तो पहुंच गए भाई दलाइले रिसालत, अब तुम कोई थोड़ी एग्जम्प्ट हो सकते हो इससे, ठीक है। तो इसकी वजह चले इन्होंने लिखी दीन से दूरी। हाँ, ये तो बड़ी आसान सी वजह आपने बता दी, दीन से दूरी, ऑफ कोर्स ये तो हुई है इसकी वजह, लेकिन और क्या वजह है इसकी? किसी और ने जवाब लिखा है कि कम इल्मी की वजह से, काफिरों से मोहब्बत और अकीदत की वजह से। जी, ये वजह बनती है, ठीक है, क्योंकि इस दौर का जो नौजवान होता है ना, उसके दिल में, जैसे इन्होंने भी जवाब दिया, काफिर के लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सॉफ्ट कॉर्नर कहते हैं ना, नरम दिली होती है काफिर के लिए इस दौर के मुसलमान के दिल में। क्यों क्यों नरम दिली होती है? बहुत नरम दिली होती है। क्यों नरम दिली होती है? इसलिए कि कुफार के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है ना, वो ऐसा है कि जिसकी वजह से उनके बारे में हम बहुत खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बहुत ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। हमारा इंटरेक्शन उनके साथ ऐसा है। पुराने जमाने में भी मुसलमानों का काफिरों के साथ इंटरेक्शन होता था, ये नहीं कि पुराने जमाने में कोई मुसलमान को काफिर का पता ही नहीं होता था और सारी जिंदगी वो सिर्फ मुसलमानों के दरमियान रह करके जो है वो मर जाता था, सारी जिंदगी मुसलमानों में रहता था और फिर मौत भी उसको जो है वो इसी हालत में आती थी कि उसको कुफारों का कुछ पता ही नहीं चलता था, वो मर जाता था, तो इस वजह से उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा नहीं होता था। नहीं, ऐसा नहीं है, इवन माजी में भी मुसलमानों को कुफार का पता होता था, तो उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं पैदा होता था? उसकी दो वजूहत थी, एक वजह तो ये थी कि उनको अपने दीन के बारे में ज्यादा पता होता था कि कितनी अच्छी चीज है, ठीक है, और कुफार की बुराइयां उनके सामने खुली हुई होती थी कि ये कितने बुरे, कितने गलत नजरियात के हामिल हैं और कितने गलत जो है वो अमाल के करने वाले हैं, ठीक है, तो अपने दीन की अच्छाइयां उसको पता होती थी और कुफर और काफिरी की बुराइयां भी उसको पता होती थी। इस वजह से कुफार के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर मुसलमान के दिल में नहीं आता था। इस दौर में जो कि कुफार के गलबे का दौर है, और कौन सा गलबा? फिजिकल गलबा नहीं खाली, बल्कि मेंटल गलबा, जहनी गलबा है उनके पास, ठीक है। कैसे? उन्होंने हम पे कब्जा किया, हमारे अपने करतूतों की वजह से अल्लाह ताला ने उनको हमारे ऊपर कब्जा करवा दिया, ठीक है, और उनका तालीमी निजाम और उनका मीडिया का निजाम, ठीक है, तालीमी निजाम और मीडिया के निजाम। अब हर मुसलमान जो है वो उन्हीं के तालीमी निजाम से पढ़ के बड़ा होता है और उन्हीं के मीडिया से एक्सपोज होता है, तो अब जो भी तालीमी निजाम बनाता है तो वो अपने बारे में अच्छा ही अपने आप को पोर्ट्रे करता है ना, उसके अंदर अपने तालीमी निजाम में वो अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करके दिखाएगा और अपने मीडिया में अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करके दिखाएगा। मीडिया जिसके कंट्रोल में होता है वो अपने आप को अच्छा बना के दिखाता है ना भाई, राइट। तो अब हर मुसलमान चूंकि मीडिया देखता है, हर मुसलमान इन्हीं की बुक्स पढ़ता है, इन्हीं के टीचर से जो है वो इल्म हासिल करता है, तो इस वजह से हर मुसलमान जो है वो इनके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर, हत्ता के लंबी लंबी दाढ़ी वाला मुसलमान भी इनके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। दाढ़ी तो होगा, उग जाती है, लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर खत्म नहीं होता काफिरों का, राइट। नमाजी तो बन जाता है मुसलमान, ठीक है ना, पहले नमाजी नहीं था, बाद में जो है वो बेनमाजी से तौबा कर ली और अब जो है वो नमाजें पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन कुफार, कुफर और काफरी के बारे में जो सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में पैदा हो चुका था, वो नहीं खत्म होता, वो नहीं खत्म होता, ठीक है। तो ये वजह है कि जब सॉफ्ट कॉर्नर खत्म नहीं होता तो अब इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि इतने अच्छे लोग हैं, ये क्यों जाएंगे जहन्नुम के अंदर, और मुसलमान बुरे नजर आ रहे होते हैं, और वाकई होते भी बुरे ही हैं मुसलमान अमली एतबार से, पूरा मुआशरे ही मुसलमानों का बिगड़ा हुआ। तो वो यही कहता है कि इतने बिगड़े हुए इतने खराब लोग ये जन्नत में क्यों जाएंगे, ये जन्नत में क्यों जाएंगे, और वो इतने अच्छे हैं क्योंकि तालीमी निजाम के वास्ते से उसने उनके बारे में सीखा, मीडिया के वास्ते से उसने उनके बारे में पहचाना। तो ये कहते हैं वो इतने अच्छे लोग हैं यार, वो क्यों जहन्नम में जाएंगे, और ये इतने बुरे लोग हैं ये क्यों जन्नत में जाएंगे। अच्छा आप लोगों ने लिखा जी सब कुछ, आप लोगों ने जवाब भी लिख सकते हैं, लिखा कि ईमान की अहमियत बहुत कम हो गई हमारी नजर में। जी ईमान तो कोई अहम चीज ही नहीं रही हमारी नजर में, ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। तो भाई अपने दीन का कुछ पता ही नहीं, ईमान का कुछ पता ही नहीं, कल भी मोहब्बत हो जाती है काफिरों से, फिर एजुकेशन सिस्टम काफिरों के मजीद करीब कर देता है। कल भी मोहब्बत कैसे हो जाती है काफिरों से, एजुकेशन सिस्टम बाद में मजीद करीब कर देता है और पहले से कल भी मोहब्बत हो जाती है, तो कल्बी मोहब्बत कैसे हो गई फिर उनसे। भाई एजुकेशन सिस्टम के जरिए से कल्बी मोहब्बत होती है ना, दो चीजें हैं जिनकी वजह से उनसे कल्बी मोहब्बत होती है, एक तो एजुकेशन सिस्टम, दूसरा मीडिया, ये याद रखें। ठीक है, ह्यूमैनिटी के नाम पर भी, ह्यूमैनिटी के नाम पर भी तो ह्यूमैनिटी कौन पढ़ा रहा होता है, ये वाली ह्यूमैनिटी, ये इनके एजुकेशन सिस्टम ही पढ़ा रहा होता है ना आपको ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी जिसको वो लोग कहते हैं। ठीक है तो नाम दे देते हैं ह्यूमैनिटी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम और मीडिया ही आपको ये सारी चीज बोल रहा होता है ना कि भाई ह्यूमैनिटी के नाम पर, इंसानियत के नाम पर उनसे मोहब्बत करो, इंसानियत के नाम पर, तो ये वजह बनती है। ठीक है बहरहाल, तो दलाइल अकलिया और नकलिया तो तुम तक पहुंच चुके हैं, सो जो शख्स उनके जरिए से हक को देख लेगा, अमन अबसरा, वो अपना फायदा करेगा, फले नफसी, ठीक है उसका अपना फायदा है, उसके अपने नफ्स का फायदा है, और जो शख्स अंधा रहेगा वो अपना नुकसान करेगा, वो मन अमिया फालिया अपना नुकसान करेगा, और मैं तुम्हारा यानी तुम्हारे आमाल का निगरान नहीं हूं, वह मा अना अलैकुम बिहफीज, वा और मा नहीं, अना मैं, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, बेहफीज निगरान। ठीक है तो यहां तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमा रहे हैं, तो फिर हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कैसे लिख दिया कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमा रहे हैं कि आप उन लोगों से ये कह दीजिए कि कद जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम फमन अबसर फली नफसिह, तो यहाँ पे कुल का तो कहीं हुक्म ही नहीं लिखा हुआ, कुल के तो अल्फाज ही कहीं नहीं लिखे हुए। ठीक है तो कैसे पता चला, भाई अल्लाह ताला तो हफीज है, अल्लाह ताला तो निगेबान है, तो फिर ये जो फरमाया मा अना अलैकुम बे हफीज, ये नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, तो जिसको ये बात पता होगी कि अल्लाह ताला तो निगहबान है, वही फिर इन आयात का सही तर्जुमा कर सकेगा, सही तफसीर कर सकेगा। ठीक है वरना आम आदमी जो लफ्जी तर्जुमे के बुनियाद पर कुरान मजीद को समझने की कोशिश करता है उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये जो है वो किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है तो ये समझेगा कि अच्छा अल्लाह ताला खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर निगहबान नहीं हूं, भाई अल्लाह ताला निगेबान नहीं है तो फिर और कौन निगेबान है। ठीक है बहरहाल तो ये लफ्जी तर्जुमे से कुरान मजीद को समझने की गलती आपके सामने दोबारा बयान करनी थी, तरह से बात कह दी। अच्छा तो मैं तुम्हारे आमाल का निगरान नहीं हूं, यानी जैसा निगरानी करने वाले के जिम्मे होता है कि नाशायस्ता हरकत ना करने दे, ये मेरे जिम्मे नहीं है, मेरा काम सिर्फ तबलीग। ठीक है तो अल्लाह ताला जो है ना वो बेशक हमें इख्तियार तो देते हैं, अल्लाह ताला तो हफीज है ना। ठीक है तो अब ये कोई कहे कि अच्छा फिर अल्लाह ताला लोगों को गलत हरकत क्यों करने देते हैं, ठीक है तो वो तो अल्लाह ताला अपनी मर्जी से गलत हरकत करने देते हैं। ठीक है क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम ही ऐसे बनाया आजमाइश के लिए, तो अल्लाह ताला ढील देते हैं ढील। ठीक तो फिर कोई अपने इख्तियार से गलत हरकत करता है तो अल्लाह ताला डिस्पाइट having the power to stop that person, अल्लाह ताला does not stop। ठीक है नबी अलैहिस्सलाम के पास तो पावर नहीं है कि कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको रोक दें, नहीं नबी अलैहिस्सलाम के पास ये पावर नहीं है कि जो गलत काम कर रहा हो उसको जा करके रोक दें, अल्लाह ताला के पास ये पावर है। ठीक है ना, अब अल्लाह ताला नहीं रोकते तो अपनी मर्जी से नहीं रोकते, ठीक है और वो मर्जी अल्लाह की क्या है, अल्लाह की मर्जी ये है कि दुनिया की जिंदगी में इख्तियार दिया हुआ है हमें। ठीक है तो इस वजह से अल्लाह ताला हमें नहीं रोकते, लेकिन अल्लाह ताला रोकना चाहे तो रोक सकते,
ठीक है।
नबी अलैहिस्सलाम का ये मामला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का मामला क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम का अगर बस चले तो किसी को भी गलत काम ना करने दें, किसी को भी गलत काम ना करने दें, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ये जो जुमला है ना उर्दू का, अगर बस चले तो ये नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर फिट होता है कि नबी अलैहिस्सलाम का अगर बस चले तो किसी को भी गलत काम ना करने दें। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का बस ही नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया ही नहीं कि आप हर एक को रोक दें जाकर के, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने क्या कहा, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, आप तो नसीहत करें लोगों को, आप तो नसीहत करें लोगों को। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ऐसे रहमतुल आलमीन हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने ये खास सिफत नबी अलैहिस्सलाम को दी कि दिल में नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश यही होती थी कि कोई भी बुरा काम ना करे, कोई भी बुरा काम ना करे, लेकिन बस ही नहीं चलता था लोगों को रोकने का, तो इस वजह से लोगों को रोक ही नहीं सकते, बस नसीहत कर सकते थे, ठीक है। तो अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो हफीज है ही नहीं कि जो हर गलत काम करने वालों को रोक दें, क्योंकि वो रोक ही नहीं सकते ना। लेकिन अल्लाह ताला तो हफीज है कि अल्लाह ताला रोक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फरमाया कि निगरानी करने वाले के जिम्मे क्या होता है कि ना शाइस्ता हरकत ना करने दे, ये मेरे जिम्मे नहीं है, मेरा काम सिर्फ तबलीग करना है, ठीक है। तो मैं तो हफीज हूं ही नहीं तुम्हारे ऊपर, मुझे तो अल्लाह ताला ने ये इख्तियार, ये बल्कि ये ताकत अता ही नहीं फरमाई कि मैं तुम्हें रोकूं। ये आपने लोगों को बता दीजिए, वमा अना अलैकुम बिहफीज। और देखिए हम इस उम्दा तौर पर दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको पहुंचा दें, और ताकि ये मुनकरीन तासुब से यूं कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से इन मजामीन को पढ़ लिया है, ठीक है। इसे पिछली क्लास में भी बात हो चुकी है तर्जुमे के अंदर भी, ये अल्लाह ताला ने ऐसे जो है ना वो दलाइल इनके सामने, अकली दलाइल और नकली दलाइल इनके सामने रख दिए कि अब जो है ना इनके पास कोई पतली गली से निकलने का रास्ता ही नहीं रहा, ठीक है, कोई एस्केप रूट ही नहीं रहा इनके लिए। तो अब जब किसी के लिए निकलने का रास्ता बंद हो जाए तो फिर वो क्या करता है, फिर वो झपट्टा मारता है ना, वो बिल्ली बिल्ली वाली बात तो आपने सुनी होगी शायद, कि अगर आप किसी बिल्ली को कमरे के अंदर बंद कर दें और उसको जो है ना वो आप कॉर्नर कर दें पकड़ने के लिए उसके पास जाए, ठीक है, और वो कहीं भाग ना सकती हो, तो फिर वो क्या करेगी, वो आपके ऊपर झपट्टा मारेगी, ठीक है, वो उसकी लास्ट रिजोर्ट होता है, ठीक है। तो ये बात फिर फ्रस्ट्रेशन को समझाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना तो फिर वो ऐसे मुंह नोचना शुरू कर देता है अगले बंदे का, ठीक है, हालांकि कोई उसके पास गुंजाइश नहीं होती कि वो अगले बंदे पे चढ़ जाए, लेकिन वो बस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो चढ़ जाता है। तो इसी तरीके से इन लोगों के साथ भी यही हुआ कि दे हैव नाउ बिन कॉर्नर्ड, ठीक है, ये तो अब फंस चुके हैं, अब जो है ना वो उल्टी बातें करने पर उतर आएंगे कि दरअसल, ठीक है, कि आपने तो है ना वो किसी दूसरे से ये चीजें पढ़ी हैं, मतलब ये कि ताकि उन पर और ज्यादा इल्जाम हो कि हम तो इस तरह वाजह करके हक को साबित करते थे और तुम फिर लफ्ज बहाने तराशते थे। लफ्ज बहाना यानी ये बात कहना कि आपने तो किसी से तालीम हासिल करी है, ये इंतहाई लफ्ज बात थी, क्यों, इसलिए कि इनमें से हर एक को पता था कि नबी अलैहिस्सलाम ने किसी से तालीम हासिल नहीं करी, ठीक है, इनसे हर एक को पता था, बच्चे बच्चे को पता था। तो अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया कि लियकूलू दरस्ता, कि हमने उनके ऊपर ऐसे जो दलाइल खोल खोल के बयान कर दिए ना, वो उसकी वजह यही थी ताकि ये लोग ऐसी बेहुदा बात करें, क्यों, ताकि ये एक्सपोज हो जाएं और इनकी फ्रस्ट्रेशन हर एक के सामने खुल जाए कि देखो कितने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि ऐसी बेवकूफी की बातें करना शुरू हो गई, ठीक है, कि हर बंदा जानता था कि ये बात सच नहीं है लेकिन ये बोले जा रहे हैं, झूठी बात बोले चले जा रहे हैं, दरस्ता दरस्ता दरस्ता, यू हैव लर्न फ्रॉम समवन, यू हैव लर्न फ्रॉम समवन, यू हैव लर्न फ्रॉम समवन, ठीक है। तो गोया के हर एक की नजर में इनकी इज्जत खत्म हो गई इस तरीके से। तो ये बात अगर किसी को समझ में ना आई हो तो पूछ नहीं, क्योंकि मैंने कोशिश तो करी है अपने तौर पर समझाने की, लेकिन शायद उतने अच्छे तरीके से ना समझा पाया हूँ कि उनको अल्लाह ताला ने कैसे ब्लंडर करवाया इनसे। अच्छा, फिर उसके बाद फरमाया कि मतलब ये कि ताकि उन पर और ज्यादा इल्जाम हो कि हम तो अच्छी तरीके से वाजे करके हक को साबित करते थे, अब तुम फिर लफ बहाने तराशते थे, और ताकि वली नुबय्ये ना हो, और ताकि लाम जो होता है ना उसका तर्जुमा उर्दू में ताके से किया जाता है, हम इस कुरान के मजामीन को दानिशमंदों के लिए खूब जाहिर कर दें। दानिशमंद कौन होते हैं? इल्म वाले, लिकौमी यालम, इल्म वालों के लिए साबित कर दें। तो यहाँ पे इल्म वालों का तर्जुमा हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने दानिशमंद से क्यों किया? उसकी वजह यहाँ पर यह बनती है कि दानिशमंदी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इल्म, ठीक है? जब इल्म आता है ना तभी अकल, दानिश को यानी अकल को ही दानिश कहते हैं, अकलो दानिश, ठीक है? तो अकल जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इल्म, इल्म से। अगर इल्म नहीं है तो फिर अकल नहीं होती, और अगर थोड़ा इल्म है तो अकल भी थोड़ी होती है, और जैसे जैसे इल्म बढ़ता है वैसे वैसे उसके साथ अकल बढ़ती है, ठीक है? असल सही मानो वाला इल्म, यानी खेल तमाशे वाला इल्म बढ़ता है तो उसके साथ अकल बढ़ती है, नहीं, बल्कि जो हकीकी इल्म होता है वो बढ़ता है तो फिर अकल भी साथ साथ बढ़ती है, ठीक है? तो ये बात हमें नहीं समझ में आती। आजकल जो है वो हमसे, किसी ने आपने से सवाल भी लिख के भेजा था, पता नहीं वो क्लास में है कि नहीं, जिन्होंने सवाल भेजा था कि मुझसे किसी किसी ने कहा, वो कोई आंटी ही थी, वो आंटी कहने लगी कि जो चार फितें हैं ना, हनफी फिका और शाफी फिका और मालिकी फिका और हम्बली फिका, ठीक है, तो किसी एक को फॉलो करना जरूरी नहीं है, हर मतलब हर चीज में ना दूसरों की बात नहीं माननी चाहिए, अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है? तो कभी इस तरह से कर लिया, कभी उस तरीके से कर लिया, कभी एक ही फिका को फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है, अपनी अकल भी कभी इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है ना? ये उन्होंने, उन आंटी ने आप में से किसी एक को ये बात फरमाई, ठीक है, आप में से किसी एक, फिर आप में से वो जो थी उन्होंने फिर सारी इसको वो सवाल लिखा कि ये बात क्या सही कह रही है ये, कि अपनी अकल भी कभी इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है? तो खाली ये नहीं कि बस हनफी फिक को फॉलो कर रहे हैं, या खाली शाफी फिक को फॉलो कर रहे हैं, या खाली हम्बली फिक को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि अपनी अकल भी कभी इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है? तो अब इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब यही है कि अकल जो होती है ना वो इल्म से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना इल्म उतनी अकल, ठीक है? तो आप जो अपनी अकल की बात कर रही हैं तो आप खुद बताएं कि आपका इल्म कितना है भाई, आपका कितना इल्म कुरान मजीद के बारे में, हदीस के बारे में, सुन्नत के बारे में, उसूल फिका के बारे में, राइट? ये कितने दकीक मजामीन है, कितने तफसीली मजामीन हैं, आपके पास इनका कितना इल्म मौजूद? आपने कोई तर्जुमा शर्जुमा पढ़ लिया है, या आपने चंद एक और किताबें अगर पढ़ ली, अगर पढ़ ली, वैसे तो आजकल भी इतना भी कोई नहीं पढ़ता, ठीक है? तो आपका कितना कम इल्म है, तो आपकी अकल भी उसी के हिसाब से होगी ना भाई। और आप जो है वो कह रही हैं कि हमें बड़े बड़े उलमाए कराम जो हमें बात समझा रहे हैं उसको छोड़ करके अपनी अकल भी कभी इस्तेमाल करनी चाहिए। जितने बड़े उलमाए कराम हैं और जितने बड़े मुहद्दिसीन हैं और जो फुकहा हैं, वो सब क्या कि भाई तकलीद, इन हजरात की तकलीद करनी है और तकलीद शख्सी करनी है। क्या मतलब तकलीद शख्सी का? मतलब ये नहीं होता कि एक शख्स की तकलीद करनी, बल्कि तकलीद शख्सी का मतलब ये है कि जो हनफी फिक में जो फतवे हैं हमने या तो सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, या सिर्फ जो है वो शाफी फिका को फॉलो करना है, या सिर्फ जो है वो हम्बली फिका को फॉलो करना है, या सिर्फ मालिकी फिका को फॉलो करना है, पिक एंड चूज नहीं करना है कि कोई काम हम्बली फिका के मुताबिक कर रहे हैं तो कोई शाफी फिका के, कोई जो है वो हनफी फिका के मुताबिक कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपकी अकल इतनी है ही नहीं कि आप जो है वो पिक एंड चूज कर सकें, क्या चीज जो है वो मुझे इस वक्त करनी चाहिए, और क्या चीज मुझे इस वक्त करनी चाहिए, क्या चीज मुझे किस तरीके से इस वक्त करनी चाहिए, ठीक है? तो भाई जो इल्म वाले थे वही अकल वाले थे, तो उनकी तकलीद कर, ठीक है, ये हमारे ऊपर वाजिब है। या ये कि फिर आप अपना इल्म उनके दर्जे का पहुंचाएं, उसने दर्जे तक इल्म हासिल करें, तब आप जो है वो इस काबिल होंगे कि आप खुद इज्तिहाद कर सकें, फिर आप खुद इमाम अबू हनीफा बन जाएंगे अपने जमाने की, या अपने जमाने की इमाम अहमद इबन हम्बल बन जाइए फिर जा करके, है, फिर आप करें जो आपको करना है, फिर आप खुद इज्तिहाद करें, फिर फकीह खुद कहलाएंगे या फिर आप। लेकिन आप ये जो बात करिए ना कि जी अपनी अकल भी कभी फॉलो करनी चाहिए, तो उसकी हकीकत को समझें कि अकल का ताल्लुक जो होता है वो इल्म के साथ होता है, और इल्म तो आपने हासिल किया हुआ नहीं है। इवन आप आलमा भी बन जाएंगी आज के जमाने के हिसाब से, तो भी उनके घर तक भी नहीं पहुंच सकेंगे जो इल्म उन लोगों के पास। तो यहां पर जो फरमाया ना लिकौमी यालमून, तो उसको दानिशमंद से क्यों ट्रांसलेट ट्रांसलेट किया कि भाई अकल वाले वही होते हैं जिनके पास इल्म पहुंचता है। अब कोई सवाल ये पूछे कि अच्छा तो ये जो फरमाया कजालिका नुसर्रिफुल आयाती वलियकूलू दरस्ता, ठीक है, तो ये तो चले काफिरों के बारे में था ना, लेकिन वलिनुबय्यिनहु लिकौमी यालमून, कि हमने खोल खोल कर बयान कर दिया उन लोगों के लिए जो के अकल वाले हैं, और आप कह रहे हैं कि अकल वाले जो हैं वो तो इल्म वाले हैं, ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ने जो है वो खोल खोल के बयान कर दिया जिनको पहले से इल्म हासिल था, तो फिर उनको खोल खोल के बयान करने की क्या जरूरत थी, उनको तो पहले से इल्म हासिल था, ठीक है, तो फिर खोल खोल के क्यों बयान किया। तो यहां पर जिस इल्म की बात हो रही है ना, विच इज इक्वल टू अकल, इल्म इज इक्वल टू अकल, ठीक है, तो यहां पर जिस अकल की बात हो रही है वो क्या कि भाई उन लोगों के लिए हम खोल खोल के बयान करते हैं, तो उनके पास कौन सा इल्म या उनके पास कौन सी अकल थी कि उनके सामने हमने खोल खोल के बयान किया, उनके पास क्या इल्म था, क्या अकल थी, व्हाट डिड दे ऑलरेडी नो, कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके सामने अपनी बातों को खोल खोल के वाजह कर करके बयान करते हैं, उनके पास कौन सा इल्म था, कौन सी अकल थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपनी बातों को खोल खोल के, ये फरमाया ना ली नुबैये ना हो, ताकि हम खोल खोल के बयान करें, वाजह कर दें, नुबैये ना हो का तर्जुमा एक्चुअली वाजह कर दें, ताकि हम वाजह कर दें उन लोगों को बात के जो के अकल वाले हैं जो के इल्म वाले हैं, तो इनके पास क्या अकल थी, क्या इल्म था कि अल्लाह ताला इनके सामने मजीद बातें खोल खोल के बयान कर रहे, ये अगर आप ऐसे कोई जवाब देना चाहे जब तक ये आदमी जो है वो एक चीज छोटी सी एक चीज जरूरत होने का क्या। सर मैं टाइम देखने के लिए जो फोन चाहिए था वो साथ था नहीं, स्क्रीन के ऊपर जो है टाइम जो है वो छुप जाता है जूम की स्क्रीन से, इस वजह से पता ही नहीं चला कि क्या टाइम है, तो बस क्लास खत्म कर देते हैं इसके ऊपर, बिकॉज टाइम जो है वो ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, अब ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं सवाल एक्सप्लेन ही सही तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल सवाल है ना, इस वजह से मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि भाई जब ये पहले से इल्म वाले थे, तो फिर अल्लाह ताला इनके सामने अपनी बातें खोल खोल के भी बयान कर रहे हैं और उनको इल्म वाला कह भी रहे हैं, तो कौन सा ऐसा इल्म था जिसकी वजह से अल्लाह ताला इनको इल्म वाला कह रहे हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा इनके पास इल्म इनके पास पहले से था जिसकी वजह से अल्लाह ताला इनको इल्म वाला कह रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने जवाब दिया हकीकत का इल्म। भाई क्या मतलब हकीकत का इल्म था, कौन सी हकीकत का इल्म था, तौरात का नहीं, तौरात एक तो तौ से नहीं होती, ता से होती है, ठीक है, तो तौरात का इनके पास इल्म नहीं, तौरात का इल्म तो जो है वो तो सिर्फ यहूदियों के पास था, मुश्रिक यहाँ तो मुश्रिकी ने मक्का का जमाना था, मक्का मुकरमा का दौर ये आया, तो ठीक है, उनके पास तो नहीं था तौरात का इल्म, इनके पास किस चीज का इल्म था जिनके, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ले नुबैया ना हो फरमा रहे हैं, ठीक है। इनके पास क्या इल्म था या इनके पास क्या अकल थी? वो अकल ये थी कि इन्होंने जो दलाइल नबूवत और दलाइल तौहीद इनके सामने रखे गए थे, इन्होंने उसको एक्नॉलेज किया था, ठीक है ना, कि भाई जो सच है उस सच को तस्लीम भी करना है। जो चीज हमारे सामने खुल के वाजे हो गई है कि ये अल्लाह के रसूल हैं, हमने उसको डिनाई नहीं करना, हमने उसकी मुखालफत नहीं करनी है, ये इल्म था इनके पास और यही अकल थी इनके पास कि जब कोई बात वाजे हो, जब कोई बात हमारे सामने प्रूव हो गई है तो उसको डिनाई करना ये बेवकूफी की बात है, ये कम अकली की बात है, ठीक है। बल्कि हकीकत तो ये है और करना तो ये चाहिए कि सबमिशन करनी है, बिल्कुल सही आपने लफ्ज लिखा है यहां पर, सबमिशन, कि भाई हक के सामने अपने आप को सबमिट करना है, ठीक है ना। ये वो अकली काम था जो कि इन लोगों ने किया, और ये अकली काम उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इस इल्म से फायदा उठाया कि सच के सामने अपने आप को झुका देना चाहिए, सच की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जब इन्होंने अपने आप को झुका दिया सच के सामने, जब इन्होंने सच को तस्लीम कर लिया, तो फिर इन्होंने नेक्स्ट काम किया, किया व्हाट वाज द नेक्स्ट गुड थिंग दैट दे डिड? इट वाज लिसन अटेंटिवली, गौर से बात अब सुननी शुरू कर दी अल्लाह के रसूल की। जब अल्लाह के रसूल की बात इन्होंने गौर से सुननी शुरू कर दी, तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, वाजह कर करके और खोल खोल करके अपनी निशानियां इनके सामने बयान करनी शुरू कर दी। एंड दे वर लिसनिंग अटेंटिवली, दे वर पेइंग कंप्लीट अटेंशन, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं, ले नुबैयना हो लिकौमी यालमो, इल्म रखने वाली कौम के सामने हमने और इल्म को खोला। वो क्या इल्म उनके पास पहले से था? वो यही इल्म था कि सच की मुखालफत नहीं करनी है, सच के सामने अपने आप को झुका देना है। और झुका देने का मतलब खाली ये नहीं कि जो सच बोल रहा है उसके सामने अपने आप को फिजिकली झुका दो, नहीं, फिजिकली झुकाने इसका मतलब नहीं होता, बल्कि उसकी तरफ अब मुतवज्जे हो जाओ, अब गौर से उसकी बात सुनो और उसकी बात को समझने की कोशिश करो और उसको याद रखने की कोशिश करो। ये काम करने वाले लोग थे, अब अल्लाह ताला ने उनको इल्म की दौलत से माला माल कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे होता है ना, आपके पास एक बुनियादी, जब एक तलब होती है, इसी को तलब भी कहते हैं, जब बुनियादी तलब होती है ना, तो फिर अल्लाह ताला इल्म के दरवाजों को खोल देते हैं और फिर इल्म के जो है ना वो दरिया बहाना शुरू कर देते हैं उस शख्स की तरफ, ठीक है ना। अब वो बैठा पेट भर रहा होता है इल्म से, मुझे तो वो मुंह खोले बैठा हुआ है, अब इल्म के समंदर उसके अंदर आ रहा है, आ रहा है मुंह को, ये तो हम एक समझाने के लिए खड़े बात कर रहे हैं, लेकिन असल में कान खोले बैठा होता है और अल्लाह ताला इल्म का समंदर जो है वो उसके अंदर फिर डाल रहे होते हैं। और बाकी जो लोग हैं ना, वो फिर उनके बारे में आगे इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मुकम्मल कर लेंगे। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम।